نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ابھی تک ہم جو چیز دیکھ چکے وہ آپ کا مدینہ میں پہنچنا تھا اور ہم نے دیکھا کہ مکی دور کی طرح مدنی دور جو ہے اس کے بھی تین حصے ہیں کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف مراحل سے گزرنا پڑا. اب سب سے بڑا جو ایک مسئلہ تھا وہ کیا تھا کہ مدینہ میں آ کے نئے ماحول کو سمجھا جائے. کہیں بھی کام کرنے کے لیے آپ کو وہاں رہنے والے لوگوں کو سمجھنا, اس وہاں ان کی مصروفیات کو دیکھنا, ان کے مسائل کو سمجھنا, یہ بہت لازم ہوتا ہے. اللہ کے نبی جب مدینہ میں آئے تو آپ کے سامنے تین قسم کے لوگ تھے. ایک تو تھے مسلمان, کچھ آپ کے ساتھ ہی وہاں سے آئے تھے ہجرت کر کے, صحابہ کرام چنے ہوئے لوگ تھے. اسی طرح دوسرا گروہ تھا مدینہ کے نیٹو لوگ, جو وہاں کے مقامی لوگ تھے, قبائلی لوگ تھے اور مشرکین تھے, ابھی ایمان نہیں لائے تھے. اور تیسرا گروہ تھا یہود کا. ان تینوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن مسائل کا سامنا کرنا پڑا, اگر اس میں ہم دیکھیں تو سب سے پہلے اگر صحابہ کرام یا مسلمانوں کو دیکھیں, اب ان کا ماحول بالکل بدل رہا تھا. مکہ میں وہ دبے ہوئے تھے, مظلوم تھے, کوئی آپ نہ فیصلہ نہیں کر سکتے تھے, مظالم کی چکی میں پسے ہوئے تھے. اس لیے مکی دور میں تو عموماً بات جو تھی وہ توحید, رسالت اور آخرت پہ ہوتی رہی, لیکن اب مدینہ میں آنے کے بعد اللہ کے نبی کے پاس جو بڑا گول تھا وہ اپنے صحابہ کرام کی تربیت تھی, اور لوگ جو ساتھ آپ کے لوگ ہوتے ہیں ان کی تربیت دوسرے لوگوں کو پڑھانے سے بہت مشکل ہوتی ہے. یہ وہ جملہ ہے جو میں نے بڑے شعور سے بولا. آج بہت جگہ دین کا کام ہونا ہوتا ہے, خواہش بھی ہوتی ہے, تمنائیں بھی ہوتی ہیں, کوششیں بھی ہوتی ہیں, لیکن وہ کوششیں بہر آور نہیں دکھتی. اس کی وجہ کیا ہے کہ پہلے وہ ماحول ہی نہیں دے پاتے جو لوگوں سے طلب کرتے ہیں. جب ہم اپنے دین کے کام کرنے والوں کے اندر ہی کوئی خوبی نہیں لا سکتے تو جن کی وہ ہیلپ کریں گے وہ دوسروں میں کہاں سے لائیں گے. تو کردار سازی, آپ اس کو کردار سازی کہہ لیں, کہ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کی کردار سازی کرنی تھی. اب وہ وقت آ گیا تھا کہ ان کے اخلاق پہ بات ہو, ان کے معاملات پہ بات ہو. اب ان کو اللہ تعالیٰ کچھ ایسی تربیت دیں کہ آنے والے دور میں وہ دنیا کے مختلف فیلڈز میں آگے بڑھیں, معاشیات, معاشرت, سیاست, جنگ, صلح, کسی جگہ کام کرنے کے کیا تقاضے ہیں. کیونکہ مدینہ وہ پہلی بستی تھی جو اسلام کے نام پہ بنی, اور یہاں سے پوری دنیا کو دین جانا تھا. اور ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی نے واقعی پھر اس کے لیے جو کام کیے وہ قابل دید تھے. اور وہی بات کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, کہ اللہ کے نبی وہ جو امی تھے, اللہ نے امیوں کے اندر ایک رسول بھیجا جو ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا اور انہیں پاک صاف کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے, اور یہ لوگ پہلے کھلی گمراہی میں تھے. اب وقت آ گیا تھا تزکیے کا, یعلمہم الکتاب والحکمہ اور یزکیہم کا. آپ پہ سراسر وہی نازل ہوتی رہی, اور صحابہ کرام کا یہ شوق تھا, ذوق تھا کہ سیکھنے کے لیے ہر وقت بے چاب رہتے. دیکھیے ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ جب ہمیں ایک نیکی کا موقع مل جاتا ہے نا تو ہم اپنے آپ کو دوسری نیکی سے فارغ کر لیتے ہیں, یہ سوچ کے کہ اب تو ماشاءاللہ ہم اس سے بڑی نیکی کر رہے ہیں تو اب ہمیں کیا ضرورت ہے. بس آپ دیکھیے کوئی شخص جماعت کروانے کے اہل ہو جائے, کسی مسجد میں امام لگ جائے, وہ دیکھتے ہیں میرے پیچھے ہر وقت اب 20, 25, 50, 100 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, تو وہ کہ بس اب چونکہ میں امام لگ گیا ہوں اور مجھے نماز پڑھانی آتی ہے اور لوگ میرے پیچھے پڑھ رہے ہیں, اب مجھے اور کیا سیکھنے کی ضرورت ہے. نہیں, اس کو اپنے اس کام میں اور اسپیشلائز کرنا ہوگا. دنیاوی میدان میں آپ دیکھیں تو ایک ڈاکٹر ڈاکٹر بننے کے بعد چھوڑ نہیں دیا جاتا, ہر سال ان کو اپ گریڈ کرنا پڑتا ہے, ان کی ریفریشمنٹ کورس ہوتے ہیں. تو اسی طرح صحابہ کرام ہجرت کر کے اپنے گھر مال قربانیاں دینے کے بعد اب یہ سوچ لے کے نہیں بیٹھ گئے تھے کہ اب ہم تو بہت بڑے ہو گئے ہیں, ہمیں اب علم کی ضرورت نہیں. اتنا شوق تھا ان کو اللہ کے نبی کی محفل میں بیٹھ کے علم کو سیکھنے کا کہ گھروں میں نہیں رہتے تھے, تجارتوں اور کاروبار اور اپنی زمینوں اور کھیتی بھاڑوں سے ہٹ کے وہ اللہ کے نبی کے پاس بیٹھتے. और वो हर तरह से यानी अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते रहे। गरीब थे जो लोग हिजरत करके आए थे, उनके पास इतना था नहीं। मदीना के जो लोग अमीर थे उनका हाल ये था कि उनके पास था, लेकिन उनके ऊपर उनके साथ बराबर का एक बोझ आ गया था, तो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम इश्यू शुरू हो गए। शुरू में कोई काम होता है तो उसके अंदर यानी वो मसाइल नहीं होते, जब प्रैक्टिकली इंसान उसको करता है, जितना काम बड़ा होता जाता है उतने मसाइल भी बड़े होते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी ने इस तरह से तरबियत की अपने सहाबा की कि वो इन मसाइल को फिर मसाइल नहीं समझते थे, बल्कि इनको वो रास्ते के छोटे छोटे कंकर समझते हुए रास्ते से हटाते गए। इसी तरह आप देखिए कि जो मदीना के मुशरिक लोग थे उनका हाल क्या था, कि मुसलमानों पे उनका भी कोई कंट्रोल तो नहीं था, लेकिन ये मुसलमानों के बारे में शक और शुभात पैदा करते रहे कि ये क्या हो गया, ये हमारे बाप दादा के दीन को छोड़ के अब दूसरे दीन पे लोगों को बुला रहे हैं, ये कहाँ से उठ के इधर आ गए। कुछ कुछ जुमले भी मिलते हैं तारीख में कि मदीना के नेटिव्स ने जो भी इल्म से दीन से दूर थे उन्होंने ताने भी दिए सहाबा कराम को, ये कहाँ से उठ के आ गए हैं, ले वहाँ के भूखे यहाँ आके हमारे टुकड़ों पे बैठ गए। नौज़ुबिल्लाह, इस किस्म की बातें भी उन्होंने अल्लाह के नबी पे की, आपके साथियों पे की, क्योंकि उनके दिलों में ग्रज था, अभी इस्लाम नहीं आया था, लेकिन सामने आके खुल के मुकाबला नहीं कर सकते थे। सामने आते तो मोहब्बत की बातें करते, लेकिन दिल में बुग़्ज़ था। इन्हीं लोगों में सरे फहरिस्त था अब्दुल्ला बिन अबी सलूल, कबीला खजरत से ताल्लुक़ रखता था। थोड़ी सी मैं आपको मदीना की हिस्ट्री बताऊंगी, इंशाल्लाह आपके लिए दिलचस्पी से खाली नहीं होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले मदीना की जो मुकामी आबादी थी वो दो बड़े गिरोहों में थी, औस और खजरज। ये औस और खजरज भी असल में पीछे जाके दो भाई थे। इन दो भाइयों की नस्लों से दो ख़ानदान चले, शुरू में मोहब्बत रही, लेकिन वही बात है शरीकेबाजी, और जहाँ इल्म नहीं होता, दीन नहीं होता, वहाँ बाज़ दफ़ा इंसान अपने सगे भाई बहनों के खिलाफ हो जाता है। इनके अंदर लड़ाई ठन गई। जंगे बुआस नाम की एक जंग हुई थी कि जिसके बारे में आता है कि उसके कुछ असरात और उससे पहले तकरीबन 200 साल तक मदीना पे जंग मुसल्लत रही। और बिल आखिर कि जब ये दोनों कबीले थक गए, लड़ लड़ के थक गए कि बस अब और नहीं कुछ हो सकता, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना हिजरत करके आने से कुछ अरसा पहले जो जंगे बुआस इनकी हुई उसके एंड पे इन्होंने ये डिसाइड किया कि बस अब और लड़ाई नहीं करेंगे, नस्लों की नस्लें ख़त्म हो गई हैं, अब क्या करते हैं कि हम दोनों में से एक सरदार मुंतखब किया जाए। क्योंकि देखिए, दो सरदारों के मसले ही लोगों को परेशान करते हैं। औस कैसे थे, हमारा सरदार हो, तो खसरत कैसे थे, कहते थे हमारा हो। अब जिस तरह एक नियाम में दो तलवारें नहीं रह सकती, अब एक मुल्क का दो 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 हुक्मरान नहीं हो सकते, इसी वजह से ये अभी तक डिसाइड ना हुए कि बिल आखिर हुआ क्या। जो जंगे बुआस हुई उसके एंड पे फिर इन्होंने डिसाइड किया कि कबीला खजरज से हम सरदार मुंतखब करते हैं, औस भी इसी को अपना सरदार मानेंगे। और जिस शख्स का नाम था वो अब्दुल्ला बिन उबई था, साहिब असर था, लोगों में इसकी शोहरत थी। कहा ठीक है, फाइनल हो गया। इसकी रस्म ताजपोशी की तैयारियां हो रही थी, यानी सेरेमनी होनी थी अभी, कि जिसमें इसके सर पे मूंगों का ताज पहनाते थे उसके दौर उस दौर में, और लोग खुश थे कि भाई अब ये हमारा लीडर है, जो ये कहेंगे हम इसको करेंगे। इतने में ही तलाउ बदरु अलैना के तराने गाए गए कि हम पे 14वीं का चांद आ गया। अल्लाह के नबी की शख्सियत और आपके यानी इखलाक और किरदार में लोगों को वो लीडर दिख गया कि जो उस मुआशरे की ज़रूरत थी। लोगों ने पहचान लिया कि हमारे मसाइल का हल अब अल्लाह के नबी के पास है, आपके मामले, आपकी हिकमत, आपके तरीक़ेकार ये मसले हल करेंगे, ना कि अब्दुल्ला बिन उबई। हुआ क्या कि अब उसका मामला पोस्टपोन हो गया, लोगों की मसरूफियत उधर हो गई। इस बात को इसने अपने दिल में गिरह के तौर पे बांध लिया, अल्लाह के नबी से तासुब रखने की ये बुनियादी वजह थी। ये सोचता था कि इनके आने की वजह से मेरी बादशाही पीछे हो गई, और ये बहुत घटिया सोच होती है जो किसी के भी दिल में शैतान की तरफ से डाल दी जाती है। अपनी महरूमियों और अपनी नाकामियों को दूसरों की के कंधे पर डालना, हमारी ज़बान में इसको कहते हैं कि अपना मुर्दा दूसरे के कंधे पर डाल देना। हमारे अपने अंदर कोई गट्स नहीं होते ना, तो हम नाकाम होते हैं, और किसी दूसरे को कामयाब होता देखकर हम ये सोच लेते हैं कि ये वजह बना हमारा, इसकी वजह से हमारा काम नहीं हुआ। मसलन कि किसी जगह एक स्टोर है, अब वो सही मैनेज ही नहीं कर रहे, वहाँ कोई चीज़ ठीक नहीं मिलती, वहाँ चीज़ कीमतें महंगी हैं या चीज़ें ख़राब हैं। इतने में वहाँ अगर कोई एक और स्टोर खुलता है और उसकी चीज़ें ऑर्गेनाइज हैं, वो मेहनत करते हैं, ज़ाहरा के कस्टमर्स जो हैं वो उससे फ़ायदा उठा लेंगे, लोग तो फ़ायदा देखते हैं, उसको क्या लगे कि बाहर एच ई वी लिखा हुआ है या फिएस्टा लिखा हुआ है। अब वो दूसरा स्टोर तो चला, लोगों ने तो आना ही था, वो तो आएंगे। चले ये हो सकता है कि पहले मजबूरन समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग के तौर पे वो पहले स्टोर पे जाते थे, अब नहीं जाएंगे, मान लिया जाता है। लेकिन अब पहले स्टोर वाले से कहा जाए कि भाई क्या हुआ, तुम्हारा स्टोर क्यों नहीं चल रहा, तो वो कहेगा इसकी वजह ये कि ये दूसरा स्टोर बन गया, ये फेयर नहीं है। पूछो तुम क्यों, तुम अपनी इसलाह करो, तुम अपनी आपको ठीक करो, वो भी ठीक हो जाएगा। तो लिहाजा इसने अल्लाह के नबी के बारे में ऐसा बुगज रखा, शुरू में ये कुफर पे रहा, इसने कहा कि मैं इनको नुकसान दूंगा। लेकिन जब इसको पता चला गज़वे बदर आगे आएगी, तो वहाँ जाके मुसलमानों को तारीख साज किस्म की फतह हासिल हुई थी कि जिसको यौमुल फुरकान का नाम कुरान पाक में दिया। उस मौके पे फिर इस शख्स ने सोचा, दिल से कुफर था अभी भी था, लेकिन इसने सोचा कि मैं दूर रह के मुसलमानों को नुकसान नहीं पहुँचा सकता, अपना बन के डसो, अंदर चलो, इनके अंदर घुसो, इनसे मोहब्बत करो, इनसे हमदर्दी करो और इनके राज लो, अंदर से लेता बाहर जाके राज देता। इसी को निफाक कहते हैं कि इंसान किसी से फ़ायदा उठाए और फिर उसी का नुकसान कर दे। और इसी वजह से इस शख्स को फिर तारीख में मुनाफिक के नाम से याद किया जाता है। तो लिहाजा ये दूसरा गिरोह था जो अल्लाह के नबी के सामने एक चैलेंज बन के खड़ा था। तीसरा गिरोह जो था वो यहूद का था। यहूद मदीना के नेटिव नहीं थे, माइग्रेटेड थे, हिजरत करके आए हुए लोग थे। और इनके हिजरत करके आने का किस्सा भी दिलचस्प है, वो किसी मौके पे जब यहूद की हिस्ट्री हम पढ़ेंगे कुरान की तफसीर में तो वहाँ डिस्कस करेंगे कि ये वहाँ से भी मारे पिटे हुए आए थे। जैसे मुहाजिर कहीं जाते हैं तो उनके पास कुछ नहीं होता, यानी इनकी आपस की लड़ाइयाँ और इनके तफरकेबाजी ने इनको इतना नीस्तो नाबूद कर दिया था कि ये रूमियों और अशूरियों के जुल्म से भाग के मदीन मक्का में आए थे। इब्रानी इनकी ज़ुबान थी, हिब्रो कहते हैं जिसको। अब जब यहाँ आए तो यहाँ ज़ुबान अरबी थी। आहिस्ता आहिस्ता ये यहाँ के लोगों के साथ घुले मिले, इनकी शादियाँ हुई, ख़ानदान बने, लेकिन इसके बावजूद यहूद के दिल में अपनी नस्ली असबियत जो थी वो बरकरार रही। अपने आप को बहुत बड़ा समझते थे कि अरबों में जैसे कहते ना कि मिक्सअप नहीं हुए, अपने यहूदी होने पे फ़ख्र करते थे, कौमियत पे फ़ख्र था, अरबों को नीचा समझते थे, उनको उम्मी कहते, जो इनकी नज़र में बुद्धू वहशी जलील और पसमानदा और अछूत किस्म के लोगों का नाम था। और इनका अकीदा क्या बन गया है उनके बारे में, कुरान पाक में उसका तذکرہ आता है, कालु लैस अलैना फिल उम्मीयीन सबील, कहते थे उम्मियों के मामले में हम पर कोई पकड़ नहीं, इनका सारा माल खा जाओ, इनको बेच दो, इनके साथ इनको अपने इशारों पर नचाओ, जो भी कर लो हमें नहीं पकड़ा जाएगा। यही सोच कुछ लोगों की आज तक है कि सारी दुनिया हमारे कब्ज़े में होनी चाहिए और हम इनको जितना मर्जी पकड़ लें। फिर इसी तरह यहूद ने इस मौके पे क्या हुआ कि इनका दीन बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, अपने दीन के लिए कोई इनके दिल में जज्बात नहीं थे, तौरात ख़त्म हो चुकी थी, इनके अंदर अमल नहीं था, रह गया था दीन के नाम पे तो फालगिरी, जादू और झाड़ फूंक रह गई थी। और इन्हीं चीज़ों की वजह से अपने आप को इतना साहिब इल्म बनाते थे कि रूहानी कायद और पेशवा बने हुए थे। इनके अपने लोग तो अपने लोग थे, मुशरिकीन और जो मक्का और मदीना के लोग थे वो भी इनसे जाके तो वजीफे लिया करते थे। और ये भी एक किसी मुल्क किसी कौम की एक जहालत की हद होती है कि अल्लाह का असल कलाम तो वहाँ से निकल जाए और वजीफों और फूकों और झाड़ फूक को लोग अल्लाह का दीन बना ले। लोग इनको बड़ा पसंद करते थे इसलिए कि अच्छा ये अहले किताब हैं, लेकिन असल दीन इनका ख़त्म हो चुका था। फिर दूसरी इस कौम की एक और खसलत ये थी कि इनको दौलत पर कमाने से बहुत शौक था, माल के हरीस थे, गल्ला खजूर शराब और कपड़े की तजारत इन्हीं के हाथ में थी, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते आज के दौर के आप नाम ले लें, और अपने माले तजारत में अरबों से 2-3 गुना ज़्यादा नफ़ा लेते थे और इस पे भी बढ़ते थे। एक और चीज़ जो इन्होंने मदीना में मुतारफ की थी वो सूद का निज़ाम था। सूद खोर कौम थे, बड़ी बड़ी रकमें लेके अरबों के जो बड़े बड़े शेख थे उनसे उनको ये कर्ज़े देते और लेते, और इस तरह जो आम लोग थे उनके ऊपर भी इन्हीं का इख्तियार आ चुका था। फिर इसी के बदले में उनकी ज़मीनें और खेतियों और बागात वगैरह गिरवी रखवाते, और इस तरह जो वहाँ की यानी फसलें उठती थी उस पे भी इनका हाल था। एक और इस कौम की इस आदत थी कि ये हथियार बनाते थे, सुनार भी थे गोल्ड स्मिथ और हथियार बनाते थे। अब हथियार बनाए या बेचने तो हैं, उसके लिए ये करते क्या थे कि औस और खजरज को आपस में लड़ाते थे, यानी औस और खजरज की जो लड़ाइयाँ थी ना वो उससे दुगना फ़ायदा लेते थे। पहले फितने और फसाद फैलाते, जब वो लड़ते तो ये सामने जाके सालिस बनते, अरे तुमने ऐसे लड़े, नहीं 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 ऐसा नहीं करते। इससे इनकी लीडरशिप बड़ी रहती, वो इनको कहते ये हमारे फैसले कराते हैं, इनसे अपने फैसले कराओ। और साथ ही जब वो लड़ते तो जाके अपने हथियार बेचते, वो कहते हैं ना कि दोहरा फायदा लेते थे और इस तरीके से तमाशा देखते। पहले लोगों को हथियार बेचते, पैसा ना होता तो उनको भारी रकमों पे सूद देते, और इस तरह से इनका खूब वहाँ पे निज़ाम बन चुका था। यहूद के तीन कबीले थे उस दौर में जब अल्लाह के नबी मदीना में गए। एक कबीला था बनू कैन का, इन्होंने खजरज के साथ दोस्ती की हुई थी। उस दौर में रिवाज होता था कि लोग आपस में दो दो कबीले या तीन तीन कबीले आपस में अमन के माहदे कर लेते थे कि अच्छा देखो तुम्हें कुछ हुआ तो हम तुम्हारी मदद करेंगे, क्योंकि पुलिस तो थी नहीं, ना कोई हुकूमत थी, ना कोई उस वक्त अदालत थी, तो आपस में मिल मिला के करते थे। दूसरा कबीला था बनू नज़ीर, ये अलग अलग ही रहते थे ज़्यादा। तीसरा कबीला था बनू कुरैज़ा, ये जो थे ये औस के हलीफ थे, यानी औस के साथ इनकी दोस्तियाँ थी और मदीना के जो इर्द गिर्द के इलाके हैं वहाँ रहते थे। अब ये दो लोगों के साथ जब ऐसे मामले करते थे तो यहूद एक बात अक्सर कहा करते थे औस और खजरज को, और वो क्या कि हमारी किताबों में जिस नबी का तذکرہ है ना, अब उसकी निशानियां शुरू हो चुकी हैं और वो अरब से आएगा, और इनके सारी दुनिया को छोड़ के मदीना में आने की वजह भी यही थी। अब देखिए कि रूमियों और अशूरियों के हाथों मारे गए, मुल्क शाम था, कहीं और चले जाते, फारस चले जाते, ईरान चले जाते, बड़ी बड़ी सुल्तनतें मौजूद थी। आप सोचिए क्यों इन्होंने वहाँ से उस वक़्त एक बंजर संगलाख ज़मीन को अपनाया। मदीना या मक्का उस वक़्त की कोई बहुत रखी याफ्ता बस्ती नहीं थी, ऐसे ही है जैसे कोई किसी गांव या सहरा में चले जाएं, पानी भी नहीं। ये क्यों गए थे? इसके पीछे इनका ये अकीदा था कि नबी ने इधर से उठना है तो हम पहले से वहाँ चले जाएं, कि जो ही वो नबी वहाँ से उठेंगे तो हम उनका साथ देंगे और इस तरह दुनिया में हम शिर्क को ख़त्म करेंगे। उनको ये नहीं पता था कि नबी तो यहीं से आएगा, लेकिन बनी इसराइल की बजाय बनी इस्माइल से आएगा। और इसराइल और इस्माइल का चक्कर क्या है? सौतेले भाइयों का, सगे सौतेले के फ़र्क ने इनको अल्लाह के नबी का दोस्त बनाने की बजाय उनका हरीफ बना के खड़ा कर दिया। कहा कि ये क्या हो गया, अल्लाह के नबी को ये मानते थे ये नबी है? कुरान पाक में 3 दफ़ा गालिबन आता है कि यारिफूनहू कमा यारिफून अबनाअहुम, ये उस नबी को ऐसे पहचानते हैं जैसे ये अपने बेटों को पहचानते हैं, लेकिन मानते क्यों नहीं थे? फ़र्क होता है। देखिए एक जुमला लिख ले, पहचानना और बात है और मानना और बात है। बहुत सारे लोग हक़ को पहचान जाते हैं, उनको पता होता है ये हक़ है, ये हमारी ज़रूरत है, लेकिन मानते नहीं हैं। क्या चीज़ रुकावट बनती है पहचानने और मानने के बीच में? ईगो, अना और तासुब, मेरी जमात, मेरा गिरोह, मेरी फला, मेरा वो। इसीलिए बाज़ दफ़ा अकेले में छुपते छुपाते फ़ायदा हासिल करते थे आपसे, लेकिन जब सामने लोगों के बीच में आते थे तो अल्लाह के नबी के मुखालिफ बन के खड़े हो जाते थे। इस तरह के माहौल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आँख खोली। फिर अल्लाह के नबी की जो तालीमात थी ना, उससे इनके माली मुफाद पर बड़ा ज़द पड़ता था, क्योंकि अल्लाह के नबी अल्लाह को एक मानने की दावत देते थे, आप सूद से रोकते थे, आपने लोगों को खुद दुनियावी जकड़बंदियों से आज़ाद कराया। ये सारी चीज़ें इन लोगों के दिल में एक नफ़रत का और एक बुग़ज़ का बीज डाल गई कि अगर इसका पैगाम आम हो गया तो हमारी तिजारतें ख़त्म होंगी। फिर एक और इनके दिल में ग्रज था, वो क्या? औस और खजरत, जिनको इतने साल से हम लड़ा रहे हैं और हथियार बेच रहे हैं, इस्लाम आते ही वो शीर व शकर हो गए, वो भाई भाई बन गए। उनको तो रंज होता था कि हम इतने साल लड़ लड़ के क्यों मर रहे थे, अब इससे इनका असलहा नहीं बिखरा था। तो ये सारा स्नैरियो जो आपके सामने रखा जा रहा है ताकि अब आप भी अपने आप को तसव्वुर में करें कि आप भी मदीना के उस माहौल में कि जहाँ अल्लाह के नबी आए। और जब भी कोई नई सल्तनत आती है ऐसे मसाइल आते हैं, जैसे हमने हिजरत को अपनी हिजरत से टैली किया था पिछले चैप्टर में, इसको भी देखिए, जब हमने ज़मीन का एक खत्ता हासिल किया था तो पाकिस्तान में भी कई मसाइल थे, उस वक़्त के हुक्मरानों के सामने कई चैलेंजेस थे, लेकिन अच्छे हुक्मरान कौन होते हैं? जो मसाइल पे काबू पाते हैं और वसाइल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो गैर मुवाफिक लोग होते हैं या जिनके अंदर अभी वो समझ नहीं होती, वो मसाइल 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 का रोना रोते रहते हैं और वसाइल को इस्तेमाल नहीं करते। वो एनर्जी जो इस्तेमाल करके छुपे हुए खजानों को ज़मीन से बाहर लाया जा सकता है, उसकी बजाय सिर्फ शिकवे शिकायतें और एक दूसरे के खिलाफ बातें करने में गुजारते थे। इसीलिए आज देखिए कि 60 साल हो गए हम अभी तक अपने कदमों पे नहीं खड़े हो सके, जबकि अल्लाह के नबी ने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 6 साल, इब्तदाई 5-6 साल आपके लिए मुश्किलात के हुए थे, लेकिन आपने इस तरीके से काम किया, इस तरह से मामला बना कि जिसमें फिर आपने मदीना वालों को खुशहाल कर दिया। क्या तरीके हुए, यानी यहाँ आने के बाद आपने जो मामलात किए, मसलन उसमें आपने एक मुआहदा किया था। इस माशरे में आने का सबसे पहला काम जो हुआ था वो मस्जिद नबवी की तामीर थी, ये पहला कदम था। यही गलती आज हमसे हो गई, हमारे बड़ों से हो गई। हमने एक टुकड़ा तो ज़मीन का लिया, लेकिन लोगों की मजहबी तालीम का वो बंदोबस्त नहीं किया जो करना चाहिए था, बल्कि पहले दौर में हुकूमत की सरकर्दगी में होते थे मजहबी इदारे, और हुकूमत पे करती थी और दीनी रहनुमा लोगों को दीन सिखाते थे। तब तक भी बरसगीर पाको हिंद में इस्लाम था, लेकिन जब हुकूमत ने उसकी फंडिंग बंद कर दी और मस्जिद और मदरसा सिस्टम चला गया लोकल लोगों के हाथ में, तो जिसका जिस जगह दिल चाहा उन्होंने अपना मदरसा खोल लिया। क्या आज आप जाके देख लें, जहाँ भी देखें, जाने की भी ज़रूरत नहीं है, हर जगह ही दिख जाएगी आपको कि एक एक गली की कोने पे आपको चार चार मदरसे, 2 कमरों का मदरसा और बाहर जामिया का बोर्ड लगा होगा, और कोई दूसरे की जामिया में दाखिल होने को तैयार नहीं। चार कोने अगर किसी चौक के, और चारों तरफ से आपको मस्जिदों के मेंबर दिखेंगे, और एक एक मसलक और एक दूसरा मसलक और एक तीसरा, और बाज़ दफ़ा उन्हीं मेंबरों पे एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें की जाती हैं कि जब मस्जिदों के ये तारुफ हो जाएं कि ये वो जगह जहां लड़ाई हुई थी, ये वो जगह जहां पुलिस आई थी, वो दीन नहीं होता। अगर आज हम साथ साथ देखें कि अगर हमें अपने मुल्कों को दोबारा उसी नहज पे लेके आना है जहां अल्लाह के नबी मस्जिद मदीना आने के बाद लाए थे, तो सबसे पहला काम क्या होगा? अगर हम अमली पहलू देखें कि पहली बात तो यह है कि जो हुक्मरान हैं वो वैसे ही होंगे जो इस्लाम के लिए वाकई सिंसियर होंगे। फिर दूसरी बात है कि जितना मजहबी तालीमी इंतज़ाम है ना, वो गवर्नमेंट को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। ये हमारे मुल्कों का आज भी इलाज है, सारे लोकल मदरसे बंद, ख़त्म, उन सबको जमा करें, सब के उलमा को बुलाएं, उनका कोर्स करें, तरबियती कोर्स करें, उनको सिखाएं, दीन की बेसिक्स बताएं, उनके अकीदे को चेक करें, उनको फिर हदीस की रोशनी में लाएं, फिर उनका तस्किया करें, फिर उसमें से लोगों को चूज़ करें, फिर हुकूमत बनाए अपने मदरसे हर शहर के कोने में, और वो ऐसे जुड़े हों कि जो बात एक में हो वो सारे मुल्कों के, सारे शहरों के अंदर वही बात हो। इस बात के बगैर इस वक्त मुसलमानों के अंदर दीन नहीं आ सकता। जब दीन के नाम पे आप चौकियां बना के बैठ जाते हैं ना, और मैं तकलीफ से कहती हूँ कि दीन की जगहों को हम अपनी जागीरें समझ लेते हैं ना, तो वो जगह सिस्टम तो बन जाता है लेकिन वो दीन नहीं आता। अल्लाह के नबी ने मस्जिद नबी बनाई, वो बुनियादी दरसगाह थी, वहाँ पे आप लोगों को तालीम देते, सहाबे कराम वहाँ सीखते, और आपने इसके लिए जो मेहनतें की वो भी काबिले दीद है। आज की जो मस्जिद नबी है, मैं जब भी वहाँ जाती हूँ मेरा दिल भर जाता है। मैं कहती हूँ अल्लाह के नबी ने कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ का एक एक फानूस भी लाखों का है। तकलीफ़ भी होती है मुझे देख के कि इतनी फैंसी मस्जिद है, आप उसकी लाइटों को देखें तो उस पर लिखा हुआ है अल्लाह नूरु समावाती वल अर्द मसल नूर ही का मिश्कात, आप सतूनों को देखें तस्तून अबू लबाबा उस पर उनकी आयतें लिखी हुई हैं, सतून आयशा, यानी पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है। अगर आप, अब अल्लाह करे कि जाएं कभी अल्लाह उम्रे के लिए, हज के लिए, आप जाके मस्जिद नबी को देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। और मैं सबको ये रिकमेंड करती हूँ, आपको भी करती हूँ, और दुआ भी देती हूँ कि अल्लाह ताला आपको हज और उम्रे पे ले जाए, 7-6 किताब लेके जाए, A to Z वहाँ बैठे, मक्का में रहें तो मक्की दौर पढ़ें, और मदीना में जाएं तो मदनी दौर पढ़ें, फिर आप देखेंगे कि आपको मदीना की ये गलियां नहीं दिखेंगी, वो गलियां दिखेंगी जो अल्लाह के नबी के दौर में थे। आपको ये चमकती मस्जिद नहीं दिखेगी, आपको वो मस्जिद देखेगी जिसकी छत टपकती थी, कि बारिश तो एक दिन आती थी और छत कई दिन रोती थी, कि जब अल्लाह के नबी के माथे मुबारक के ऊपर मट्टी के निशान पड़ जाते थे, कीचड़ लग जाता था, ये गीली मट्टी से दीन निकला हुआ है, ये दीन बड़ी मस्जिदों और बहुत चमकती हुई जगहों से नहीं आया। आज जिस दीन की बची खुची छोटी छोटी किरणें हम देख रहे हैं ना दुनिया में, ये कच्ची मस्जिद नबी से आया था। हम कहते हैं पहले हम जब तक एक फुल डेकोरेटेड मस्जिद नहीं बनाते, कोई इदारा नहीं बनाते, हम काम नहीं कर सकते। नतीजा क्या होता है? बन जाती हैं चीज़ें अल्लाह की तौफीक से, काम करने वाले नहीं रहते। मुझे यहाँ का नहीं पता, लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कई जगह जाके देखा है, इतनी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं मुसलमानों के पास, हज़ारों के वहाँ हॉल हैं खुले हुए, लेकिन खाली। एक रिपोर्ट थी मेरे पास कहीं यूएसए और नॉर्थ अमेरिका की थी, कि वहाँ यानी कितने परसेंट, शायद 80% मस्जिदें ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ जुमे की नमाज के लिए खुलती हैं, 5 वक्त नमाजें भी नहीं होती। जिस शहर से मैं आई हूँ वहाँ जो आखिरी बात मुझे पता थी आज से कई साल पहले, और अब उसमें काफ़ी इजाफा हो गया, 70 मस्जिदें हैं हमारे उस शहर में मुसलमानों की, और अब उसके अलावा छोटे छोटे मसल्ले और कितने, लेकिन नमाजें मस्जिद में आत लोग की तरह है। लोग कहाँ हैं? खाली क्यों है आज जगह? अल्लाह के नबी की मस्जिद का हाल क्या होता था? कच्चा खच भरी होती थी। आप जाके इस हिस्ट्री को खोल के देखें, यानी लोगों के लिए खड़े होने की जगह नहीं होती थी, लेकिन वजह क्या हुई कि हमने मस्जिदें बनाई, मस्जिदों को आबाद करने वाले नहीं बनाए। आज हमारा काम क्या हुआ कि हम पहले दिन चंदे का बॉक्स रखते हैं, डोनेशंस दो, हम भीख मांगते हैं अल्लाह के नाम पे। और मैं सोचती हूँ, यानी मुझे हमेशा इस चीज़ से बहुत तकलीफ़ होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ भी जब आना था तो मैंने इन सब से यही कहा था कि देखिए किसी से कोई चंदे की बात ना कीजिएगा, मुझे जितनी चिड़ी इस लफ्ज़ से है ना शायद ही किसी और से हो। आप कैसे लोगों से ले सकते हैं, आपके पास उसको इस्तेमाल करने के रिसोर्सेज नहीं है। नहीं, मैंने कहा कि अगर चंदे पे मस्जिदें चलती, डोनेशन बॉक्स होते हैं ना, तो फिर वो सबसे ज़्यादा आपको मस्जिद अहराम में दिखते, और आज दुनिया की सबसे खूबसूरत चमकती हुई मस्जिद बैतुल्ला, जाके इस नियत से उसका कोना कोना छानिएगा, आपको कहीं डोनेशन बॉक्स नहीं मिलेगा। ठीक है, ज़रूरत पड़ती है, मैं ये नहीं कहती जो लोग लेते हैं गलत करते हैं, ऐसा कोई गलत मतलब ना लीजिएगा, देने वालों ने देना है। इस्लाम क्या कहता है? जिन्होंने देना है वो आके कहें हमें देना है, लो जिनके पास इल्म है वो इल्म देते हैं कि हमें इल्म देना है, जिनके पास माल है वो कहते हैं हमें माल देना है। ठीक है भाई, अपना अपना हिस्सा डालो, काम हो। जब इल्म वाले माल का तकाजा करें, उनकी 1 घंटे की स्पीच का खुलासा क्या हो कि आखिर में चंदा होगा, यानी इंतहाई तकलीफ दे बातें। लोग कहते हैं कि ये दर्स कोई भी शुरू करें आखिर में चंदे पे बात आती है। अच्छा जी फुलां, ये बात कोई भी शुरू करते हैं ना आखिरी पॉइंट सियासत आ जाता है, ये बात कोई भी शुरू करते हैं ना तो आखिरी पॉइंट जब अपना मसलक आता है। ये दीन नहीं है। दीन क्या है? जो है वो दो। अल्लाह के नबी खुद काम कर रहे हैं, जहाँ आपकी मस्जिद उठनी बैठी आपने वहाँ को मुंतखब किया उस जगह को। अब उस ज़मीन के मालिक 2 यतीम बच्चे थे, आपने उनसे ज़बरदस्ती नहीं मांगी, कीमत दी उसकी, और आपने उसके पैसे अदा करवाए। किसने दिए अल्लाह जानता है, लेकिन पैसे दे के उनसे ली, क्योंकि जब मस्जिदों में इधर उधर का माल भी लग जाता है ना तो बरकत नहीं रहती। जब लोग माल इतना कमा लें जहाँ से मर्जी कमा लें, और बाद में कि इसमें से 5% निकाल के मस्जिद बना दें, बरकत चली जाती है। जिस माल से मस्जिद बनती है ना, या मस्जिद से मुराद है कि जो भी दीन का जगह बनती है, उसका बहुत गहरा ताल्लुक है कि वो बनी किसके पैसों से थी। अल्लाह ताला को तो तय्यब माल पसंद है, अल्लाह ताला को नापाक और खबीस माल पसंद नहीं होता। तो लिहाजा अल्लाह के नबी ने उस मस्जिद की कीमत दी, फिर उसमें खुद आए, आपके अपने कंधों पे पत्थर और ईंटें ढोते थे आप, और फिर साथ वो मस्जिदें बनती थी, और ज़ुबान पे जुमले क्या थे? अल्लाहुम्मा ला ऐशा इल्ला ऐशल आखिरा फ़ग़फ़िर लिल अंसारी वल मुहाजिरा। ए अल्लाह, ज़िंदगी तो बस आखरत की ज़िंदगी है, बस अंसार और मुहाजरीन को बख्श दे, ये दुनिया की ज़िंदगी नहीं। फिर उनके कोई माल से कोई ताल्लुकात नहीं होते, या उनको ये नहीं कि पहले हमें ऐश चाहिए फिर कोई होगी, कहते हैं ये तो दुनिया की 4 दिन की बात है। फिर आप कहते हैं कि ये बोझ खैबर का बोझ नहीं है, ये हमारे परवरदिगार की कसम ज़्यादा नेक और पाकीज़ा है। और सहाबे कराम इतने खुश होते अल्लाह के नबी के इन अशार से कि उसके जवाब में कहते लाइन क़ाद ना वन नबी यामल लजा कमिन्नल अमल मुदल्लल। अगर हम बैठे रहें और अल्लाह के नबी काम करें तो हमारा ये काम गुमराही का काम होगा। ये किरदार चाहिए आज। आज ऐसे लीडर्स नहीं चाहिए जो नरम गद्दों पे सोएं और अवाम सड़कों पे भूखी मरे। वो तो लजीज खाने खाएं और अवाम भूखी मरे, और वो गद्दों पे सोएं और अवाम जो है वो ज़मीन पे अखबारें बिछा के सोए। कहते थे अल्लाह के नबी काम करें और हम ना करें, यानी लोगों को जुरत मिलती है काम करने वालों को देख के कि ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। जब मस्जिद बन रही थी तो हुआ क्या कि वहाँ कुछ कब्रें निकल आई, मुशरिकीन की कुछ कब्रें थी, और इसी तरह कुछ वीराना था, खजूर और गरकत के कुछ दरख्त थे, अल्लाह के नबी ने उनकी कब्रों को उखड़वा दिया और वीराने को बराबर किया और खजूरों के दरख्त काट के उसको किबले की जानिब लगा दिया, और उस वक्त तक किबला बैतुल मकदस था। कैसे मस्जिद बनी, कभी आप उसको पढ़ के तो देखें। 2 दिन में कहते हैं कि मस्जिद बन गई थी, पत्थर के वो, यानी वो जो खजूरों की छाल थी उसकी छतें लगी, दीवारें कच्ची ईंटों और गारे से बनी, खजूर की शाखों से छत बनी, उस पे पत्ते डाल दिए गए और खजूर के तनों के खंभे बना दिए, और इसी तरह ज़मीन पर रेत और छोटी छोटी कंकरियाँ बिछा दी, और इसी तरह 3 दरवाजे लगाए गए। किबले की दीवार से पिछली दीवार तक 100 हाथ लंबाई थी और चौड़ाई भी इतनी जैसे कुछ थी, और बुनियाद 3 हाथ थी। इसी तरह मस्जिद के बाजू में चंद मकानात बनाए, कच्ची मिट्टी की ईंटों की दीवारें थी, यानी छोटे छोटे हुजरे बने जो अल्लाह के नबी की बीवियों के लिए बने। इससे भी पता चलता है कि यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रहने के लिए मस्जिद का बिल्कुल साथ पसंद किया, क्योंकि जो साथ रह के इंसान इंतज़ाम को देख सकता है वो दूर रह के नहीं देख सकता। और जब फिर ये छोटे छोटे हुजरे बन गए तो अल्लाह के नबी फिर हज़रत अबू अय्यूब अल अंसारी के घर से निकले और वहाँ आबाद हो गए। और आपको पता है कि जब ये मस्जिद बनी तो उस वक्त आपके खड़े होने के लिए क्या था, मिंबर भी नहीं था। खजूर का एक छोटा सा तना लेके वहाँ मिंबर की तरह बना दिया। कुछ अरसा आपने उसी के साथ टेक लगा के खुतबा दिया। फिर उसके बाद एक औरत थी, उसके दिल में अल्लाह ने वो नेकी का ख्याल डाला कि मैं क्यों ना मिंबर बनवा दूँ। उसने तरखान से बात कर करा के एक मिंबर बनवाया और अल्लाह के नबी को सामने आके दे दिया कि अब आप इस पे खुतबा देंगे। आप वहाँ खुतबा देने के लिए खड़े हुए तो आपको आवाज़ आई रोने की। हदीस में आते सही बुखारी की रिवायत है कि ऐसे रोने की आवाज़ थी जैसे छोटा बच्चा ऊँगता है ना, ऊँ की आवाज़ें आती हैं, या ईना कुछ इस तरह के लफ्ज़ आते हैं। अल्लाह के नबी अपने मिंबर से नीचे उतरे और जाके उस खजूर के तने के साथ अपने होंठ लगाए, उस तने के अंदर से रोने की आवाज़ आ रही थी। आपने वहाँ कुछ जाके कहा, आवाज़ आनी बंद हो गई। फिर वापस आप मिंबर पे आए और आपने कहा कि ये तना आज इस गम से रो रहा है कि कल तक अल्लाह का नबी मेरे साथ टेक लगा के अल्लाह का कलाम पढ़ता था, आज मैं महरूम हो गया। हम तो खुश होते हैं ना कि आला मेंबर बन गया, संदल की वुडका बन गया, लेकिन वो टूटा हुआ मेंबर तो वहाँ से उठता है। हमें जब किसी अच्छी चीज़ के मिलने की खुशी होती है तो ये गम भी होना चाहिए कि ये जो पुरानी चीज़ उठी है वो कहाँ गई।